نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ایک اور دن اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں. یہ وہ اللہ کی نعمتیں ہیں کہ جس کو شاید کبھی ہم سوچتے بھی نہیں. بات یہ ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ایمان والے کی پوری زندگی کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ زندگی گزر گئی تیری نعمتیں گن نہ سکا, اب تیرے پاس آ گیا ہوں, اب تو جتنا حساب لینا چاہے لے لے اور جو چاہے وہ چھوڑ دے. حقیقت یہ کہ ہم سب اپنی زندگی بھر کی ساری نیکیاں لے کر اگر اس مالک کے در پہ چلے گئے اور اگر ان کو ایک پلڑے میں ڈال کر صرف ایک نعمت جو اللہ نے آپ کو مجھے زندگی میں دی اس کا حساب مانگ لیا گیا تو وہ ہوگا جو کبھی سوچا بھی نہیں ہے. زندگی میں اللہ کی نعمتوں کی قدر سیکھنی ہے. غموں سے, تکلیفوں سے, دکھوں سے نکلنے کا راز یہی ہے. دکھ سکھ اللہ تعالیٰ کی طرف کے پیغام ہیں, جیسے نوٹیفیکیشن بھی آتے ہیں. کبھی کوئی بل پینڈنگ ہو اور پے نہ کیا ہو تو کمپنی کی طرف سے کچھ نہ کچھ آتا ہے کہ اب آپ کے ذمہ یہ ہے وہ ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہماری زندگی کے دکھ اور سکھ صرف اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے معاملے کو چیک کریں. الحمدللہ ڈپریشن اے ٹو زی کہیے, لا تحزن کہیے, غم نہ کریں کہیے. اس پوری سیریز کا یہی مقصد ہے کہ آپ اور میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بن جائیں. یہی دعا بھی ہے, خواہش بھی یہی ہے اور امید بھی یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی کے سب غم سائٹ پہ رہ جائیں گے اور ہم ایک بہت بڑے غم کو اپنے ساتھ لگائیں گے اور وہ ہے غم آخرت کہ میری آخرت کا کیا ہوگا. تو آئیے اللہ تعالی کی توفیق سے غم نہ کرو سیریز کے ڈے ٹو کا آغاز کرتے ہیں. یہ جملہ کتنا سودنگ ہے, لا تحزن ان اللہ معنا. غم نہ کیجیے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. آپ صرف اس نام کو بھی دن میں دو چار بار دیکھا کریں, سوچا کریں, اس پہ غور و فکر کریں تو زندگی میں اس سے بہت پازیٹیو چینج آئے گی. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے لیے جو دنیا میں نعمتیں رکھی ہیں وہ تو ہیں ہی, آخرت کی نعمتوں کو بھی آسان کر دینا. اور جب جتنا اس کے اوپر غور و فکر کریں گے اتنا ہی لیں گے. آپ سے وعدہ تھا کہ ہر دن قرآن پاک میں سے وہ آیت آپ کے سامنے رکھوں گی کہ جس میں حزن اور غم کی بات ہے. تو نوٹ کیجئے گا آج کی ہماری آیت 112 سورۃ البقرہ, جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مجھے ایک بہت ہی پیارے کام کے کرنے کا حکم دیا ہے. ہم تو حکم ہی کہیں گے. اب وہ آپ میں حکم سمجھیں, وہ مشورہ سمجھیں, وہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہو, وہ کیسا ہو یہ میں آپ نہیں جانتے. آج کے دن کی ہماری آیت ہے سورۃ البقرہ آیت 112, بلا من اسلم وجہہ للہ. جی سوچیے ذرا, بلا من اسلم وجہہ للہ, بلکہ جس نے سپرد کر دیا اپنا چہرہ اللہ کے, چھکا لیا جس نے اپنے چہرے کو اللہ کے آگے. وہ محسن, اور محسن بھی ہو, یعنی عبادات کے معاملے میں دیکھا جائے تو اللہ کے آگے ایسی عبادت کرنے والا گویا کہ اس کو دیکھ رہا ہے, اور اگر بندوں کے ساتھ محسن کو دیکھیں تو حق سے زیادہ دینے والا یہ ہوگا محسن. یعنی آپ کہہ لیجئے پہلا کام کیا ہے, مسلم بن جاؤ. محسن بننے سے پہلے مسلم بنو, پھر چہرہ اللہ کے آگے جھکا دو, یعنی اپنی عقل کو بھی جھکا دو, اپنی انا کو بھی جھکا دو, اور اللہ کی دیوی تقدیر پہ راضی ہو جاؤ. ناسیتی بیدک, مومن کی شان ہوتی ہے وہ اپنی پیشانی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا ہوا محسوس کرتا ہے, اور پھر خود کو محسن کے درجے پہ لے آؤ. فلہ اجرہ عند ربہ, بے شک ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہوگا. اور وہ کیا ہے, ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اس اجر سے ایک ایکسٹرا چیز کیا ملے گی کہ اس کی زندگی سے خوف اور حزن نکل جائے گا. پوری بات کو اگر ایک سٹریچ میں پڑھ دوں آپ کے ساتھ تو کیا ملے گا, بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. दरअसल न तुम्हारी कुछ खसूसियत है और ना किसी और की। हक ये है कि जो भी अपनी हस्ती को अल्लाह की इताअत में सौंप दे और अमलन नेक रविश पर चले, इसके लिए इसके रब के पास उसका अजर है और ऐसे लोगों के लिए किसी खौफ या रंज का कोई मौका नहीं। तो अपने आप को गमों से पाक करने का नुस्खा इस आयत की रोशनी में ले लीजिए। नंबर 1, खुद को मुस्लिम बनाइए, मती बनाइए। और मुस्लिम सिर्फ एक नाम नहीं, एक कल्ट नहीं, ये एक स्टेट ऑफ हार्ट भी है। ये एक कैफियत का भी नाम है दिल में जब होती है, और ये पूरी शरीयत पे अमल करने का भी नाम है जब हम अल्लाह की दीवी शरीयत पे अमल करते हैं तो चेहरा अल्लाह के आगे झुकेगा। और फिर मोहसिन बनते हुए इबादात में हुसन और मामलात में एहसान होगा। ये 3 काम कर लीजिए, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अल्लाह ताला आपके लिए कितनी ही आसानियां करेगा ज़िंदगी को गमों और दुखों और तकलीफ़ों से पाक करने के लिए। उसके बाद चलते हैं कि अभी तक हम जो मौजूआत कर चुके वो क्या थे। हर दिन इंशाल्लाह हम बहुत सारी टिप्स लेंगे। पिछले सबक का खुलासा, हमने मुख्तलिफ चीज़ें देखी कि अगर हम चाहते हैं कि गम खुशियों में बदल जाएं तो पहला क्या था कि या अल्लाह कहना सीखें। या अल्लाह, मेरा अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह। ये वो डायरेक्ट अंदाज़ है अल्लाह को पुकारने का कि जो नबियों ने और अल्लाह के रसूलों ने इख्तियार किया, और नेक लोगों ने भी यही किया। ये अलग बात है कि जब बात वालों का ताल्लुक बिल्ला कमज़ोर हुआ तो उन्होंने दूसरों को बीच में डालकर अल्लाह से मांगना चाहा कि शायद दूसरों की नेकियां हमारे काम आ जाएं। तो जब आपको अल्लाह ताला के साथ कुर्ब और मोहब्बत महसूस हो तो फिर आप इसको फील करेंगे। फिर दूसरी चीज़ देखी थी, सोचें और शुक्र बजा लाएं, थिंक एंड बी थैंकफुल। हम सोचते ही थोड़ा हैं, इसीलिए तो शुक्र भी थोड़ा है। और सोचने के लिए शौरी तौर पे सोचना सिखाइए खुद को भी और अपनी नस्लों को भी, क्योंकि जब कोई चीज़ रोज़ मिल जाए और बग़ैर एफर्ट के मिल जाए ना तो हमें उसकी कोई ज़्यादा कदर रहती भी नहीं। हम कहते हैं इट्स ओके, अब क्या करना, दौरे कुरान था, बस मजबूरी थी, साथ लगे रहे, अब क्या करें, अब रोज़ रोज़ थोड़ी हो सकता है ये कुछ। और इस तरह से एक इंसान फिर नेमतों की नाकदरी करता है। और देखा जा रहा है कि जितनी नेमत ज़्यादा होती है हम उतने केयरलेस होते हैं। कभी कभी कोई चीज़ मिले तो सोच के, वक्त देख कर, घड़ी पे अलार्म लगा के, बार बार दूसरों को बता के, मुझे बता देना, मैं मिस ना कर दूं। और जो नेमत ज़्यादा मिले हम उसके साथ वही करते हैं। जो ज़्यादा माल मिलने वाला अमूमन इसराफ और तबजीर की सूरत में माल को ज़ाया करके करते हैं, तो ये नाकदरी है। आप आज नाकदरी करेंगे, कल आपके बच्चे कभी भी कदरदान नहीं होंगे। तो जब तक नेमतों की कदर नहीं होगी बात नहीं बनेगी। और उसके बाद फिर हमने अगली चीज़ जो सीखी थी वो क्या थी, जो गुजर गया सो गुजर गया। पंजाबी में इसको कहते हैं मिट्टी पाओ, मिट्टी पाओ, पीछे कर दो। क्यों, क्या करना, पिछली चीज़ों को याद करके अगर आज की चीज़ें भी हाथ से खो जाएं तो क्या करेंगे। कितना ना समझ है वो इंसान जो वो चीज़ जो उसके हाथ से चली गई उसके गम में जो हाथ के सामने चीज़ है उसको भी छोड़ दे। आदम कहते एक सपारा छोड़ दी, ओहो अच्छा फिर तो मैं नहीं ज्वाइन कर सकती, फिर अगले साल बताइएगा जब नया कुरान शुरू होगा। तो अभी 29 पीछे भी तो है ना। तो आपका रब आपको मुझे हमारी कमियां बेशियां दिखाता है, सीखने और सुनने का यही फ़ायदा होता है। तो ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज़िंदगी में जो कुछ है उसको ले लीजिए और बस उसके बाद फिर आगे चलिए। क्योंकि जो गुजर गया वो आपका नहीं था। वो कहते हैं ना कि जो नहीं मिला उसका गम नहीं, जो मिला है वो भी किसी से कम नहीं। तो ये ज़िंदगी के कोड वर्ड्स हैं, इसको हमेशा अपने साथ रखिए तो इंशाल्लाह ताला गम अल्लाह ताला आपके दूर कर देगा। फिर उसके बाद आज पर नज़र रखें, आज पर, टुडे, अलान। हर चढ़ता सूरज आपको मुझे यही सबक दे के आता है कि देखो मैं आ गया हूँ, एक दफ़ा चला गया तो कभी वापस नहीं आऊँगा, तो बेहतर है कि तुम इससे फ़ायदा उठा लो। लेकिन अफसोस की बात है कि हम कल के गम में जीने वाले आज से फ़ायदा नहीं उठाते। फिर अगली चीज़ हमने देखी थी, मुस्तकबल को आने दीजिए। यानी जो भी चला हुआ है, जो भी आया ही नहीं, उसकी फिक्र क्या। तो बस लोग अपने मुस्तकबिल को संवारने के शौक में अपने आज को ज़ाया कर देते हैं और अपॉर्चुनिटीज़ को वेस्ट करते हैं, और कुछ तो इंतज़ार ही करते रहते हैं, बस ये हो जाएगा तो मैंने बड़े नेक हो जाना है, और वो चीज़ मिल गई तो बहुत नेक हो जाना है। तो याद रखिए अपनी ज़िंदगी को एज़ इट इज़ कबूल कीजिए। आज को ऐसे लीजिए जैसे इससे खूबसूरत कोई दिन किसी इंसान की ज़िंदगी में आया ही नहीं है। और जब आप इसको ले लेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि सरेंडर करना आसान होगा, भला मन असलमा बचाहू लिल्लाह की सूरत में। फिर इसी तरह हमने देखा था कि बेजा तनकीद का सामना कैसे करें। मान लीजिए कि कुछ लोग आपका सब्र होते हैं। हमारे इर्द गिर्द इंसानों की जो दुनिया बसाई गई है ना, हम अमूमन उसमें रहने के लिए क्या सोच लेते हैं कि जब तक हम हर तरह से अपने मनपसंद लोगों में नहीं गिरेंगे ना, हम तब तक खुश नहीं रहेंगे। तो लिखिए, ये दुनिया खुशी और गम का मजमू है, यहाँ सब कुछ आपकी मर्जी का नहीं होगा, कुछ लोगों को सिर्फ बर्दाश्त करना पड़ता है, बस बर्दाश्त कीजिए, इससे ज़्यादा उनकी औकात नहीं है। और आप उनको उधर बिठाते हैं जहाँ वो बिठाए जाने के लायक नहीं है। कहा कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो किसी अच्छी सवारी पे बिठाए जाने के लायक नहीं, और आप उनको अपने दिमाग में बिठाते हैं। ज़्यादा सोचना छोड़ दीजिए, तनकीद जो करता है उसकी वजह जानिए, और आप देखेंगे कि तनकीद के जवाब में जब आप बेहतरीन तरीके से अपना मुहासबा करेंगे ना, तो अल्लाह ताला की रहमत आपके ऊपर ऐसे छाएगी कि आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो जितना ज़्यादा आपकी ज़िंदगी बाकी चीज़ों से खाली हो जाएगी, उतना आप लोग बेहतरीन में होंगे। और जो जितना अच्छा काम करेगा ना, उस पर उतनी तनकीद होगी, बैठे रहेंगे तो क्या होगा। चलते हैं अगली टिप पे, जो तरतीब के एतबार से देखें तो टिप नंबर 7 है, किसी के शुक्रिया का इंतज़ार ना करें। जी, आप कहेंगे मैंने कब किया है, सोचिए ज़रा, क्या आपको लोगों से शुक्रिया का इंतज़ार होता है? जब आप खाना बनाती हैं और लोग खाते हैं, लोग खा रहे हैं, खुश हो जाइए कि आपकी चीज़ उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। इंतज़ार तो किसी और चीज़ का होता है, कान तो कुछ और सुनना चाह रहे होते हैं, और हमारी नज़रें तो किसी और ही चीज़ की मतलाशी होती हैं। तो ज़रा सीखते हैं कि किसी के शुक्रिया का इंतज़ार कैसे ना किया जाए। देखिए, अल्लाह ताला ने बंदों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है, इनको रोज़ी दी कि इसका शुक्र अदा करें, लेकिन अक्सर ने इबादत की तो गैर अल्लाह की, शुक्र किया तो गैर अल्लाह का। मतलब यह है कि इनकार, ज़्यादती, जफा और कुफराने नेमत इंसानी फितरत पर गालिब है। इसलिए आपको बिल्कुल हैरानी ना हो अगर लोग आपके एहसान को फरामोश कर दें। जी, जब लोग अल्लाह के एहसानों को फरामोश करते हैं, तो आपका मेरा है ही क्या किसी पर एहसान जो कोई हमें फरामोश करे। और जब लोग भलाई का इनकार कर दें, हुस्न सलूक को भूल जाएं, बल्कि आपसे दुश्मनी शुरू कर दें और एहसान के बदले बुग़्ज़ और हसद रखें, तो उस वक्त सोचा करें कि इतनी नेमतें देने वालों का लोग शुक्रिया नहीं अदा करते, तो फिर मेरा आपका क्या हुआ। और अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, वो नाराज़ ना हुए मगर इस बात पर कि अल्लाह और रसूल ने अपने फजल से इनको बेनियाज कर दिया था। सूरह तौबा की आयत है, और मुनाफिकीन की आदत होती है। दुनिया का खुला दफ्तर सामने है, आपके भी और मेरे भी, इसे पढ़िए। वो तमाम का तमाम उस बाप का किस्सा है जिसने बेटे को पाला, पोसा, खिलाया पिलाया, तालीम व तरबियत दी, उसको सुलाने के लिए खुद जागा, इसे खिलाने के लिए खुद भूखा रहा, इसके आराम के लिए खुद थका। मगर जब वो बेटा जवान हो गया, तवाना हो गया, सोचिए क्या ये घर घर की कहानी नहीं। जब बेटा जवान हुआ तो बाप के लिए एक ऐसा कान कटा हुआ जानवर साबित हुआ कि जिसको अपने मालिक से कभी भी वफा ना हो। कभी मजाक उड़ाया, कभी नफरत की, कभी नाफरमानी की, किसी चीज़ में भी तो कसर नहीं छोड़ी। अजाब बनकर रह गया वो बच्चा अपने बाप के लिए। बस वो लोग जिनके एहसानात कम ज़र्फ़ों ने भुला दिए हों, वो मुस्तरब ना हों। यानी अगर आपने किसी पे कोई एहसान किया और लोग भूल गए ना, तो गम ना कीजिए, उनको खबर सुना दीजिए कैसी हस्ती के इनाम के मुस्तहिक बनेंगे जिसके खजाने कभी खाली नहीं होते। लिखिएगा, जब लोग आपकी नाकदरी करें तो याद रखिए कि वकान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। 5वें पारे की आखिरी आयत है, अल्लाह ताला कदरदान भी है और जानने वाला भी है। लोग तो आपको क्या देंगे और लोग आपकी कितनी को कर देंगे, जितने उनके दामन है उतने ही समेटेंगे। अल्लाह ताला तो आपको जब देगा और आपके किसी छोटे से काम की कदर करेगा, तो वो कहते हैं ना कि कदर की हद ना कर दूँ तो कहना। अब इसका ये भी मतलब नहीं कि एहसान और सलूक करना छोड़ दें, बल्कि ये है कि आप नेकी कर दरिया में डाल के आदी हो जाएं। जी, ये बड़ों ने बात ऐसे ही नहीं सिखा दी मुझे आपको, کفرانِ نعمت پر رنجیدہ اور مایوس نہ ہوں، یعنی جب کوئی آپ کی ناقدری کرے تو آپ دکھی نہ ہوں، بلائی کے کام کریں تو لیوے چھلا کریں، ایسا کریں گے تو ہر حال میں کامیاب ہوں گے، آپ کو کسی کی ناشکری سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ احسان کرنے والے ہوں گے، آپ کا ہاتھ اونچا ہوگا جو نچلے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندوں کا جملہ سورۃ دہر آیت 9 میں سکھایا، ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلاتے ہیں، تم سے کسی بدلے اور شکریہ کی تمنا نہیں رکھتے۔ عام لوگوں میں انکار اور ناشکری کی جبلت کو بہت سے باشعور بھی بھول جاتے ہیں، گویا انہوں نے ناشکروں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کی یہ بات سنی ہی نہیں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بھی بیٹھے بھی کھڑے بھی، پھر جب ہم اس کی تکلیف اس سے ہٹا دیتے ہیں تو ایسا ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے اپنی تکلیف کے لیے جسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ ان حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے اسی طرح خوش نما بنا دیا گیا۔ کیا بتایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات میں کہ انسانوں کی طبیعت میں ہے کہ یہ لوگوں کی بات کو پیچھے ڈالتے ہیں، سورۃ یونس کی آیت نمبر 12 ہے یہ۔ تو لہٰذا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ناشکریوں کے اوپر دل میلا نہ کریں، آپ بالکل بھی مضطرب نہ ہوں۔ اگر کسی کم ظرف کو قلم دے دیں جو اس سے آپ ہی کا مذاق کرنے لگے، ہجویہ باتیں یعنی مذاقیہ باتیں لکھنے لگے، تو آپ بتائیے کیا کریں گے، قلم چھین لیں گے؟ یا اگر کسی جاہل کو آپ ڈنڈا تھمائیں اور جس سے وہ آپ ہی کا سر پھوڑ دے تو کیا ہوگا، دکھی ہو جائیں گے؟ نہیں، انسان کی نفسیات یہی ہے کہ جب یہی سلوک ان کا اللہ کے ساتھ ہے تو پھر میں اور آپ کیا ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے جو ہم نے اس ٹپ میں دیکھا، کہ کسی کے شکریہ کا انتظار نہ کیجیے۔ آپ دیکھیے کہ اندر کھاتے اگر انتظار ہوتا ہے نا تو اس کو نکال دیجیے۔ تزکیہ اور تربیت کے ساتھ ساتھ انسان اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ نہ تعریف بندے کو بڑھاتی ہے آگے اور نہ تنقید روکتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں شکریہ ادا نہ کریں، موٹیویٹ نہ کریں تو ہم ڈی موٹیویٹڈ ہونے لگتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کے ناشکرے پن کی سب سے بڑی علامت یہی ہے، یعنی اب جو بات کی ہے نا، ذرا سے اس کو جذب کرتے ہیں، کہ جب ایک انسان حقیقت میں ناشکرہ پن اس کے ساتھ ہو جاتا ہے نا، تو وہ کہتا ہے کہ فلاں نے میری قدر نہیں کی۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم اللہ کے معاملے میں کیسے ہیں، ہمارے بچے ہماری قدر نہ کرے تو ہم روئیں، تو جب نعمتیں دینے والا نعمتوں کے بدلے میں ہماری نافرمانیاں دیکھے تو ہمارا کیا مقام ہوتا ہوگا، اور مشرق تو سب سے بڑا ناشکرہ۔ تو لہٰذا آپ بھی کسی کے احسان فراموشی پہ مت کڑیے۔ پھر آپ دیکھیے کہ انسان کا مقصد کیا ہے، بینگ اے ہیومن، اللہ نے جو مقصد حیات دیا، سورۃ زاریات، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ خالق کی رضا حاصل کرنی ہے مخلوق کی خدمت کر کے، اور اسی طرح رب کائنات نے تمام مخلوق کے رزق کی ذمہ داری خود لی ہے، اسی لیے پھر شکر گزاری اور اطاعت بھی اسی کی کرنی ہے۔ تو مقصود کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ آپ کہہ سکتے ہیں لا مقصود الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو سورۃ یونس کی آیت 12 میں کہا، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کہ یہ بات جو ہم نے پڑھی اس کو اپنے اوپر لیجیے، کیا میں خوشی میں رب کو یاد رکھتی ہوں؟ کیا میں ایسی تو نہیں ہو جاتی خوشیوں میں گویا کہ اللہ کو کبھی پکارا ہی نہیں تھا؟ پھر آپ دیکھیے کہ انسانی فطرت کے غالب رویے کیا ہے، اکثریت کا رویہ کیا ہے، حق کا انکار، ضد اور ہٹ دھرمی ہے، احسان فراموشی ہے، بد سلوکی ہے، بغض اور حسد ہے، اور بے وفائی ہے، ایک بھی اچھا رویہ نہیں ہے اکثریت کا۔ پھر ہم پتہ نہیں کیوں کہتے ہیں میجورٹی از اتھارٹی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اقلیتوں کے رویے کیا ہیں، حق کی تائید، بھلائی، خیر خواہی کرنا، احسان مندی، درد مندی، دوسروں کو خیر دینا اور وفا شعاری۔ ذرا سا اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ میرا رویہ اقلیت والا ہے کہ اکثریت والا ہے۔ اچھے ہوں چاہے تھوڑے ہوں، بہت سارے برے ہونے سے تو وہی بہتر ہیں، ہم عموماً لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ شکریہ اور تعریف کا انتظار نہ کریں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو کسی کی ناشکری سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ بھی بڑی مزے کی بات ہے، بادشاہ بادشاہ ہی رہتا ہے، चाहे लोग उसकी कदर करें कि ना करें, उस्ताद उस्ताद ही होता है, चाहे कोई उसकी कदर करे ना कदरी करे। इसी तरह माँ बाप और दूसरों को भी देखिए। फिर इसी तरह से आप देखिए कि हक को पहचानने वाले अगरचे तादाद में थोड़े ही होते हैं ना, लेकिन उनकी कदर व मंजिलत बहुत ज़्यादा होती है। वो कहते हैं ना कि मोमिन गिने नहीं जाते, तोले जाते हैं। बहुत ही प्यारा वाक्या याद आ गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु भी दुबले पतले थे, तहबन बार बार नीचे चला जाता था, जिसम पे गोश होता तो कुछ चढ़ता। और इसी तरह से अब्दुल्ला बिन मसूद, पतली पतली टांगे थी, दुबले पतले थे, कभी खजूर के दरख्तों पे चढ़ के खजूरें तोड़ते तो नीचे से मुनाफिक उनको देखकर मुस्कुराते, हंसते, मजाक उड़ाते कि देखो पतली पतली टांगों वाला और ये वो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे अपने प्यारे साथी के लिए कहा कि इब्ने मसूद की एक एक टांग क़यामत के दिन उहद पहाड़ से भी भारी होगी। आज जो मजाक उड़ा ले उड़ा ले, कल उनका वजन है। और इसके बरक्स काफिर का क़यामत के दिन क्या वजन होगा? आप सूरत कहफ में हर जुमे को यकीनन पढ़ते होंगे, फला नकीम लहुम यौमल क़यामती वजना। अल्लाह तो कुफर के साथ पलड़े ही नहीं रखेगा, क्योंकि वो बगैर इम्तिहान की फेल है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि अगर आपने किसी की कदर की, आपने किसी पे कोई एहसान किया, तो आपका हाथ ऊपर हो गया ना। तो ऊपर का हाथ तो हमेशा नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। अब फैसला आपका है कि दिल में दरवाज़ा किसके लिए खोलना है। आप अच्छे काम करते जाइए, खुद बहुत लोग आपकी तारीफ और तकदीस करते रहेंगे। और यहाँ एक और चीज़ समझ लीजिए कि आप अल बाकी के हाथ में अपना हाथ दे दें। जिसने अल बाकी से अपना ताल्लुक जोड़ा ना, उसका नाम बाकी रहेगा, और जिसने फानी चीज़ों के पीछे खुद को फना कर दिया, वो फना हो जाएगा। मैं अपनी इस बात की दलील आपको देना चाहती हूँ। आज भी देखिए नेक लोगों के नाम है ना, अल्लाह वाले, आप उनको अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से शुरू करते हुए सारे आइमा कराम और आज के दौर में मारूफ बुजुर्गाने दीन, जिनके नामों पे लोग इतना कुछ करते हैं। अगर वाकई वो हक परस्त है ना, तो आज उनका नाम क्यों है? क्योंकि उन्होंने अल बाकी के साथ ताल्लुक जोड़ा। अल बाकी के साथ ताल्लुक जोड़िए, बका मिल जाएगी। और एक और बात याद रखिएगा कि जो अपनी जिंदगी में बाकी रहने वाले के साथ ताल्लुक जोड़ते हैं ना, अल्लाह उनके जाने के बाद उनके नाम को बाकी कर देता है। ये अल्लाह के वादे हैं। जो लोगों को खैर और नफ़ा देकर जाता है ना, बाद में उसका नाम रहता है। इसके बरक्स आप देखिए कि अपने बच्चे, अपना खाना पीना, जीना मरना, आज मरे कल दूसरा दिन। फिर आप देखिए कि हमने इसमें सूरह दहर की आयत पढ़ी कि इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअ वला शुकूरा। इस पे आप भी अपने लिए मुहासबे का नुक्ता लिखें। चंद चीज़ें हैं जो आप लिखेंगे और इंशाल्लाह आप देखेंगे इन चीज़ों पे गौर करने से भी आप टेंशन फ्री हो जाएंगे। मसलन, क्या मैं दूसरों को मज़े मज़े के खाने जब खिलाती हूँ तो मकसूद तारीफ होती है, शुक्रिया होता है, या ली वज हिल्ला? तो ली वज हिल्ला इस लफ्ज़ को अपना कोड बना लीजिए। आज के बाद अपने छोटे छोटे ऐसे रिमाइंडर्स और बुक मार्क्स बनाने शुरू कर दें। भलाई के काम अल्लाह के लिए करेंगे तो कामयाब होंगे, और जिन लोगों के एहसानात कम ज़र्फ़ों ने भुला दिए हैं, वो ऐसी हस्ती के इनाम के मुस्तक बनेंगे जिसके ख़जाने कभी खाली नहीं होंगे। तो क्या फिर पता चला कुफरान नेमत पे रंजीदा ना हो और मायूस ना, डोंट बी सैड, वो है कदर करने वाला। और इस पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सी नसीहत भी सुन लीजिए। अबू दाऊद की रिवायत है 4813, जिसको कोई चीज़ दी जाए फिर वो भी देने के लिए कुछ पा जाए तो चाहिए कि इसका बदला दे, और अगर बदले के लिए कुछ ना पाए तो इसकी तारीफ करे, इसलिए कि जिसने उसकी तारीफ की तो गोया उसने उसका शुक्र अदा कर दिया, और जिसने छुपाया यानी उसके एहसान को, तो इसने उसकी नाशुक्री की। अब इसको कैसे समझेंगे? आप किसी के साथ कोई काम तारीफ पाने के लिए मत कीजिए, लेकिन अगर कोई आपके साथ कोई अच्छा मामला करे तो आप उसको जवाब में कुछ अच्छा नहीं दे सकते ना, तो उसकी तारीफ कर दे। उम्मीद है कि बात समझ आ गई। तो फिर क्या समझ आया? खुलासा, शुक्रिया और तारीफ की उम्मीद गुरूर और रियाकारी के जज्बात पैदा करेगी। तकब्बुर होगा, मैंने ये किया, और देखा जाए दे तो आधा दिन तो ये गुनगाते रहते हैं अपने। वो कहते हैं ना कि हम अपनी ही जुल्फों के मतवाले बने फिरते हैं। याद रखिए, अपनी तारीफ करने वाले से गुरूर ना खरीदें, क्योंकि इसने मकर का जाल बिछाया और लालच का दामन पसारा है। अल्लाह ताला आपको मुझे अमल की तौफीक दे। क्या सीखा इस टिप से? अमल के चंद नुकात, लोगों के साथ भलाई का मामला करना, शुक्रिया की उम्मीद नहीं रखनी, अजर की उम्मीद सिर्फ अल्लाह ताला से रखनी है, لوگوں کی ناشکری پہ فضول میں اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا، اور اپنا محاسبہ بھی کرتے جائیے کہ اکثر جو میں دکھی ہوتی ہوں، سیڈ، فیلنگ ڈاؤن، ڈپریسڈ، کیا اس کی وجہ میری کسی امید کا پورا نہ ہونا تو نہیں؟ دیکھیں نا، آپ اتنے اچھے کپڑے پہن کر گئے، شادی میں گئے، کسی نے تعریف ہی نہیں کی، بس دکھی، سیڈ، آج کے بعد نہیں جاؤں گی۔ اور یقین کیجئے، صرف چند تعریفی جملوں کے لیے 20-25-30-30 ہزار کا میک اپ ہوتا کہ لوگ کہ واہ کیا پری لگ رہی ہیں۔ سب کچھ کر لے اور آپ اچھے لگ بھی رہے ہوں اور پھر بھی کوئی تعریف نہ کرے، تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر آپ کے ساتھ کیا ہوتا۔ تو لہٰذا بے نیاز ہوئیے، اچھا پہنیے اپنے لیے، اچھا اوڑھیے اپنے لیے، لوگوں کو اچھا کھلائیے اللہ کے لیے، تاکہ اسے نعمت کے لیے کوئی کام کرنا، یہی ہوتے لی وجہ اللہ، کہ میری نہیں میرے رب کی خوبی ہے، اور اگر میرے پاس کوئی خوبی ہے بھی تو دی کس نے ہے؟ آپ دیکھیں گے جس نے اس مشورے پہ عمل کر لیا نا کہ شکریہ کی امید نہ رکھیں، اس کے آدھے سے زیادہ غم دور ہوں گے۔ آپ دن میں 10 دفعہ شاید یہ جملہ بولتے ہوں گے، میری قدر نہیں کی، آپ نے مجھے شکریہ نہیں بولا، میں نے یہ کیا، آپ نے کچھ نہیں کیا۔ اور یاد رکھیے، یہ ساری قدردانی اپنوں سے چاہتے ہیں، دوستوں سے چاہتے ہیں، غیروں سے تو میں کوئی اتنی امید بھی نہیں ہوتی۔ وہ اور بھی نہ سمجھا کہ جو غیروں سے تعریفیہ جملے سننے کے لیے رب کو ناراض کرتے۔ تو جتنا زیادہ اس پہ غور کریں گے زندگی سنورے گی۔ 2-3 سیکنڈ تک خود کو کہیے اس بات کو سننے کے بعد کہ میں نے اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا۔ دیکھیے، خوشیوں کا دروازہ کھلنے والا ہے آپ کی زندگی میں، اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس غم سے آزاد کر دے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ نیکسٹ ٹپ پہ چلتے ہیں، 8 نمبر، دوسروں پر احسان سے انشراح صدر ہوتا ہے۔ آسان جملہ بول دیتی ہوں، دوسروں پر احسان کرنے سے سینہ کھلتا ہے، اور سینے کا کھلنا کیا ہے؟ گھٹن کا دور ہونا، اور جب گھٹن دور ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ غم نہیں رہتا۔ یہ غم ایک بہت بڑا بوجھ ہے، اسی لیے آپ کو میں نے انٹروڈکشن میں غم سے متعلق تینوں لفظ بتا دیے تھے جو قرآن پاک میں آئے تھے، جی، غم، بس اور حزن۔ تو آئیے دیکھتے کہ دوسروں پر احسان کرنے سے سینہ کیسے کھلتا ہے۔ اللہ کی چند سنتیں ہیں، ان میں سے ایک سنت یاد رکھیے کہ خیر، بھلائی اور معروف کا نتیجہ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ عموماً جزاک اللہ کارڈ میں ہم یہ آیت کوٹ کر کے دیتے ہیں جب کوئی ہم پر احسان کرے، کوئی بھی خیر کا کام کرے، کیونکہ خیر ہمیشہ پلٹتی ہے۔ لوگوں پر احسان کرنے والا سب سے پہلے خود اس احسان سے فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ جی کیسے؟ مثلا اس کے دل، اخلاق اور ضمیر کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، کھلا پن، انشراح کہتے ہیں کھلا پن، اور ان بساط کیا ہوتا ہے؟ یہ خوشی، اسمائل۔ اکیلے میں بھی آپ ایسے لوگوں کو مسکراتے دیکھیں گے کہ جو واقعی دوسروں کے لیے جیتے ہیں، اور یہ جینا بھی ایک بڑا ہی خوبصورت جینا ہے۔ اگر آپ کو مجھے نصیب ہو جائے نا تو اس کی تمنا کیجیے اور کوشش کیجیے، آپ کا سینہ کھلا رہے گا۔ کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں نا تو آپ ان کو دیکھیں گے خوش، ریلیکسڈ، بہت خوش خوش، ہر وقت لگتا ہے کوئی چیز ہے جو چھپا رہے ہیں، پہ کیا بات ہے، یہ کون سی خوشی مل گئی، یہ کیا ہو گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ تعلقات بڑے اچھے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے، بیمار بہت کم ہوتے ہیں، اسمائلی فیس ہیں، اور ان کو مل کے نا ایک پازیٹیو انرجی ملتی ہے، ویوس نکلتی ہیں ان میں سے، بااخلاق بڑے، ہیلو، آئیے، السلام علیکم، کیا حال ہے۔ اور اس کے برعکس کچھ لوگ جلے کڑے، کچھ لوگوں کو دیکھ کے لگتا ہے ابھی اوون سے نکلے ہیں، اللہ ماشاء اللہ، بڑھ بڑاتے ہوئے، سڑیل، گھٹے ہوئے، ماتھے پہ تیوریاں، یعنی ایسی نگیٹو ریس نکلتی ہیں ان سے کہ سلام کرنے کے بعد بندے کا دل کرتا ہے یہ کہیں کہ بھائی مجھے ٹائم نہیں ہے، میں جا رہا ہوں، آپ کہیں جی ضرور جائیے، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا بہت زیادہ ناگوار شخصیات بنتی ہیں ان کی، اور اکثر بیمار بھی رہتے ہیں، یعنی آپ کہہ لیجئے کہ سافٹ ویئر ان کا ہارڈ ویئر میں بدلا ہوتا ہے۔ تو جب آپ کا دل، آپ کا اخلاق اور آپ کا ضمیر سکون اور اطمینان محسوس کرے، اندر ایک کھلا پن محسوس ہو، تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ دوسروں پر احسان کر رہے ہیں۔ بس جب کوئی رنج اور غم کی بات پیش آئے تو دوسروں کے ساتھ کوئی نیکی کر دیں۔ لکھیے، ہمارے یہاں تو یہ بڑا ہی غیر معروف ہے، دوسروں کے ساتھ نیکی کیجئے جب آپ کو کوئی غم پہنچے۔ ہم کہتے ہیں لوگ کریں نا ہمارے ساتھ اس وقت نیکی، ہم تو پہلے ہی بڑے دکھی ہیں۔ نہیں، कोई एहसान कर दें, आपको इत्मीनान और सुकून मिलेगा। किसी महरूम को दें, और यहाँ एक जुमला बोलती हूँ, उसको दें जो वाकई महरूम है। बस आप देखिए कि हमारे यहाँ अमूमन सदका देने का बड़ा रिवाज है ना, कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, चलो खाना खिलाना, एक देख, चलो दाल चावलों की देख पका के खिला दो। वो दाल चावल तो रोज़ खाते हैं, आज अगर आपने देख पकानी है तो कौरमे की पका के बांट दीजिए, चिकन बिरयानी की देख बन रही है, यानी किसी को वो चखाइए जो उसने कभी चखा ना हो। ये भी एक बहुत प्यारा तरीका होगा, एक टिप होगी कि उसको चखाइए जिसने कभी नहीं चखा। पिज़्ज़ा लेकर दे दीजिए आप उन बच्चों को या जिन्होंने कभी नहीं लिया। आपके बच्चे तो रोज़ खाते हैं, तो अगर चार बर्गर हैं तो पांच मंगाकर एक नौकर के बच्चे को भी दे दीजिए। आप महसूस करेंगे कि जब हम इस दर्जे के देने वाले बन जाते हैं ना, तो हमारा दिल कैसा खिलता है। हम देते भी हैं ना तो बचा खुचा सारा बर्गर बच्चे ने खा लिए, किनारे खा लिए, कहते नौकर को जो अपने बच्चे को खिला लो। नहीं, वहाँ दीजिए जहाँ कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती ना करने वाला हो। यकीन कीजिए, मेला लग जाएगा आपके गिर्द लोगों का। आप लोगों को वो दीजिए जो उनके पास नहीं है, आपका दिल खुश होगा। फिर किसी मजलूम की मदद करें, किसी को मुसीबत से निकाल दें, किसी भूखे को खिला दें, किसी मरीज की इयादत कर दें, खुशी और खुशबख्ती आप पर छा जाएगी। आप देखिएगा आपका दिल खुश रहेगा। खैर का काम भी खुशबू की मानिंद है, इसका लाने वाला, बेचने वाला और ख़रीदार सब इससे फ़ायदा उठाते हैं। इसी तरह देखिए नफ्सियाती भलाइयाँ होती हैं, ये बाबरकत जड़ी बूटियों की तरह हैं जो नेकों के दवा खाने में इस्तेमाल की जाती हैं। हुस्न इखलाक के भूखों पर मुस्कुराहटें लुटाना ये सीखिए लिखिए। यानी कुछ लोग वाकई भूखे होते हैं अखलाकी तौर पे। इसी तरह आप देखिए कि अखलाकियात की दुनिया में सदका जारिया बन जाएगा आपके लिए। अपने भाई बहन से खंदा पेशानी से मिलना भी सदका। चेहरे की उदासी और तारीकी दूसरों के खिलाफ एलाने जंग है, जिसके नतायज का इल्म अल्लामुल गुयूब को ही है। मारूफ वाक्या है, आप सुनते रहते हैं कि एक तवायफ ने प्यास से मर रहे कुत्ते को पानी का एक घूंट पिला दिया और जन्नत की मुस्तहिक बन गई, क्योंकि मालिक दो जहां गफूर और रहीम भी है, वो मोहसिन भी है, एहसान से मोहब्बत रखता है, गनी और हमीद है। लिहाजा ऐसे लोगों को जिन्हें बदबख्ती, बेचैनी और खौफ ने जकड़ रखा हो, नेकी और भलाई के बाग की तरफ आइए। लिखिए, आप बेचैन हैं, खौफ है आपके अंदर, कोई कोई लगती है ऐसी बदबख्ती आई हुई है कि पता नहीं ये टल नहीं रही, तो लोगों के ऊपर नेकी और एहसान कीजिए। दूसरों की मदद, गमगुसारी, एयानत और खिदमत करनी चाहिए, इन्हें खुशबख्ती पूरे तौर पर मिल जाएगी। वो किसी के साथ जो भी एहसान करता है अपने रब की खुशनुदी के लिए ही करता है, जो यकीनन उससे खुश होगा। वला सऊफ यरदा, अल्लाह के नबी को कहा गया था ना, तो क्या देखा, ज़रा सा इसको दोहराते हैं। करना क्या है, एहसान करना। दूसरों पर एहसान करेंगे शरह सदर हासिल होगा। अभी तक तो इतनी बार दुआ मांगी, रब इशरह ली सदरी व यस्सर ली अमरी, फिर भी ना मिली। शरह सदर ही नहीं होता, रोज़ पढ़ के बैठते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में एहसान नहीं है। ज़िंदगी का एक असूल बनाइए, देने वाला बनना। आप देखिए कि जैसे सदका करने से माल बढ़ता है ना, या एक नेकी करने के बाद अगली नेकी करना आसान हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह खलके इलाही पर एहसान करना सीने की फरागी का ज़रिया बनता है, सीना खुल जाता है और ये सरासर खैर है। आजमा के देखिए, करके देखिए, और देखिए कि सदका सिर्फ माल का नहीं होता, मोहब्बतों का होता है। बस आपके इर्द गिर्द के लोगों में कुछ बहुत टॉपर्स हैं, टॉप क्लास लोग हैं, टैलेंटेड, और कुछ बेचारे मेरे जैसे मीडियोकर, बेकार तो नहीं मैं कहती क्योंकि कुरान टीचर हूँ, लेकिन दरमियाने दर्जे के लोग, कुछ बिल्कुल ही हल्के होते हैं जिसको कहें फेलियर। अगर आप एक अच्छी उस्ताद हैं ना, तो एक काम लिखिए, आप ऐसे थर्ड क्लास लोग जिनका कोई मूड ही नहीं पढ़ने का, आप उनके साथ मोहब्बत कीजिए। एहसान इतनी खूबसूरत चीज़ है कि ये दूसरे को नेकी की तरफ ले आता है। आप दूसरों पर ऐसे एहसान कीजिए कि जिसको कोई बुलाए ना, आप उसके पास जाकर हाल पूछिए। कोई नौकर का बच्चा, कोई बैगर, कोई सड़क पे ठेले वाला, रेड़ी वाला, बाबा जी आपका क्या हाल है और आप क्या करते हैं। और अगर घर में आई हुई मासियाँ, मेड्स, बेचारियों को अगर शरबत का एक ग्लास देकर पूछिए, और थोड़ी देर बैठो पंखे के नीचे, फिर काम करना। आप ये करके देखिए, आपका रंज और आपका गम दूर भाग जाएगा। दूसरों पर एहसान करने से दिल को सुकून मिलता है। रंज गम के वक्त दूसरों के साथ नेकी और एहसान करें, आप टेंशन फ्री बन जाएंगे। कह लीजिए कि यू आर नाउ एंटरिंग अ स्ट्रेस फ्री जोन। कब? दूसरों पर एहसान करके। और जब सारे ही लेने वाले बन जाए, समेटने वाले, दूसरे फला, तो क्या होगा? मैं किसी की बात सुन रही थी तो उन्होंने कहा कि किसी की गाड़ी बाहर थी, गाड़ी का किसी ने कोई एक पुर्जा उतारा और लेके चला गया। सुबह बड़ी घबराहट में चौकीदार ने कहा कि जी वो नई गाड़ी जो थी उसके तो शीशे को उतार के ले गया। तो ये हंस के कहते हैं, चल कोई बात नहीं ना, उसको मेरे से ज़्यादा ज़रूरत होगी। तो मुलाजिम ने कहा, ये क्या बात हो गई, वो तो जाकर ये 200-400 रुपए के बेच देगा, लेकिन जब आप लगवाएंगे तो ये कई हज़ार के हैं। तो उन्होंने कहा, सुनो, उसको 300 की ज़रूरत होगी। अगर मेरी गाड़ी के शीशे उतार कर वो जाकर किसी भी कबाड़िए को 300 रुपए के बेचता है और उससे कुछ खाना पानी लेकर बच्चों को देता है, उसको जो खुशी मिल गई ना, मैं उस खुशी के कफ़ारे में 20-25 हज़ार के शीशे दोबारा लगा लूँगा। तो लिखिएगा एक जुमला, आपके खोने से कोई दूसरा पा ले, ये है एहसान। बस हम चलते कुटते क्यों हैं? लो जी, ये फिर स्विच ख़राब हो गया, ये बल्ब फिर फ्यूज़ हो गया। भाई, आपका स्विच ख़राब अगर ना हुआ, आपका बल्ब फ्यूज़ ना हुआ, तो आप इलेक्ट्रिशियन को क्यों बुलाएंगे? और जब इलेक्ट्रिशियन आएगा तो आप उसको 200-300 रुपये देंगे ना, वो 200-300 उसको देने के लिए आपका स्विच ख़राब हुआ है। बस ये सोच रखिए, आपको गम खुशियों से ज़्यादा अजीज होने लगेंगे, क्योंकि आप दूसरों को देने वाले बन जाएंगे। आप खुश रह ले, मेरी खैर है, कोई बात नहीं, कुछ भी होगा। देखिए, जहाँ तक तो जोर चलता है वहाँ तक तो लगा लीजिए, जहाँ जोर ना चले ना वहाँ कबूल कर लिया करें। अपनी नालायकियों को भी एक्सेप्ट कर लें, जो देना था अल्लाह ने इतना ही था मेरे नसीब में, तो जितना ज़्यादा बला मन असलमा वजहहु लिल्लाहि वहुवा मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंदा रब्बिही वला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून। देखिएगा, लोग आपके गुण गाएंगे, और ये वो चीज़ें होती हैं जो मिलती हैं। कभी आप कुछ चाहते हैं, वो नहीं होता, वो हो जाता जो अल्लाह चाहता है। तो आप कह लीजिए, एक तेरी रज़ा है, एक मेरी है। चलो, मेरी ना चली तो मेरे रब की चल गई ना। ये जो दिन में हम नमाज़ें रोज़े करते हैं, सजदे हैं ना, ये असल में यही सिखाते हैं। हम जिस्म के सजदे करते हैं, रूह के भी करके देखें, दिल के भी सजदे करके देखें, एज इट इज़ को कबूल करना सीखें। लोग आपसे बुरा करें, आप अच्छा बन जाएं, इंशाल्लाह आप महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला ने आपके लिए खैर रख दी। तो खुशबख्ती का हसूल करना क्या है, अब इस बात को सुन के और समझ के किसी महरूम को अता करें, जिसको लोग कहते, चल चल बाबा माफ़ कर। आप जाइए, दरवाज़ा खोल कर उसको 50 रुपये दे दीजिए। वो उसके दिल पे जो चोट पड़ी थी ना दूसरे की झिड़की से, वो आपके 50 के नोट से एक फाहा बन जाएगी। किसी मजलूम की दाद रसी कर दीजिए, किसी मुसीबत सदा का गम दूर कर दीजिए, अल्लाह आपके गम दूर कर देगा। किसी भूखे को खिलाइए, किसी मरीज की आदत कीजिए, रहमी रिश्तों को जोड़िए, आपके दिल में इतनी खुशी भरेगी। ये जो इस वक्त इंसानियत दुखी है ना, ये लॉकडाउन और कोरोना, ये उसमें हिस्से डल रहे हैं हमारे आपके। क्या ये हम आपको दुखों से निकलना सिखाते हैं, खुशियाँ सीखें? तो याद रखिए कि हम इंसान जो ख़ताकार और नादान हैं, अगर हम दूसरों के साथ नरमी और खैरख्वाही करेंगे ना, तो हमारे अपने दिल खुश होंगे। कितना सुकून मिलता है जब आप किसी दुखी को खुश रहना सिखाते हैं। जैसे एक डॉक्टर है, अगर उसके इलाज से मरीज़ ठीक हो जाए, तो अक्सर लोगों से मैंने सुना, कहते जी डॉक्टर की खुशी तो इसमें कि मरीज़ सेहतमंद होके घर चला जाए, खुश हो जाए। तो दिल खोलने के लिए ये काम तो करने ही पड़ेंगे, और इसके लिए आपको वन साइडेड काम करना पड़ेगा। हम इंसान इंसानों से जुड़े हुए हैं, हमारी ज़रूरतें दूसरों से जुड़ी हुई हैं, आप और मैं इससे बाहर निकलेंगे तो खुशबू की मानिंद खैर फैलाइए। वम्मा यन्फो नासु फयम्कुस, खैर का काम ही खुशबू की मानिंद होता है। इसका बनाने वाला, ख़रीदार, इसका बेचने वाला, इसका लाने वाला, सब खुशबू से फ़ायदे उठाते हैं। अल्लाह के नबी के एक हदीस में भी यही बात पता चलती है, और कुरान तो सूरत अर्रहमान आयत 60 में कहता है, हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं है। और एहसान की सूरतें, मसलन भाई से खंदा पेशानी से मिलिए, बहन से और भाई से भी अपनों से अच्छी तरह मिलिए। खुशबख्ती के असूल के लिए दूसरों की मदद कीजिए, गमगुसारी कीजिए, खिदमत कीजिए, और जो खिदमत करते हैं ना वही जीतते हैं। गाड़ी कितनी हसीन क्यों ना हो, कहीं जाना है तो चल ही नहीं रही, कोई आ गया बैठा आए उसको भी दिखाएं करते हैं तो वो हिल नहीं रही गड़गड़ करे, आप उसको पकड़कर बाहर फेंकेंगे, शक्ल को क्या करना है मैंने, वक्त पे चलती नहीं, मैं लेट हो गया, मेरी फ्लाइट मिस हो गई, मैं अपनी मीटिंग में ना जा सका, आप उस गाड़ी को ज़्यादा दिन नहीं रखेंगे। तो एक बात जो बचपन से मैंने अपने बड़ों से सुनी है, खिदमत में अज़मत है, खिदमत करते जाइए लोगों की, आप देखिए आपको इज्जत मिलती जाएगी, और हुस्ने अखलाक के भूखों पर मुस्कुराहटें लुटाई। लोग दुखे बैठे बेचारों के पास भूख अखलाक की, चिड़चिड़े नेगेटिव लोग, बिगड़े हुए ताल्लुकात के, बीमार, आपके ऊपर तानों के कह लीजिए कि वार करने वाले, आप जाके कहे अस्सलाम वालेकुम, स्माइल तो दीजिए, फिर देखिए आपका दिल कितना खुश होता है। और ये सब कुछ करना है तो रब की खुशनुदी हासिल करने के लिए, इसीलिए अल्लाह ताला एहसान की रग़बत दिलाते हुए सूरत लईल आयत 19 और 20 में कहते हैं, वमा लिया हदन इंदहु मिन नेमतिन तुज्ज़ा इल्ला इब्तिगा अवजही रब्बिही लाला, और किसी का इस पर कुछ एहसान नहीं जिसका बदला दिया जाए, सिर्फ अपने रब की रज़ा चाहता है जो सबसे बुलंद है। तो हाईलाइट कीजिए वजह रब्बिही लाला, यही आज की आयत है, बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाह, अल्लाह हमें इस दर्जे का मुस्लिम बना दे। आपका दिल चाह रहा होगा ना कि बस मैं तो मुहसिना बन जाऊँ और मैं तो मुहसिन बन जाऊँ, तो कैसे कर सकते हैं, इसके तीन तरीके नोट कीजिएगा। मोमिनों पर एहसान करने के तीन तरीके हैं। पहला क्या है कि नफ़ा नहीं दे सकते तो उनका नुकसान ना कीजिए, दूसरी बात है खुश नहीं कर सकते किसी को तो रंजीदा भी ना कीजिए, दिल ना तोड़िए, और अगर उनकी तारीफ नहीं कर सकते तो उनकी बुराई भी ना कीजिए। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या खूबसूरत नुस्खा है दूसरों पर एहसान करने का, कुछ नहीं लगता, एक रुपया नहीं लगता और आप मुहसिन बन जाते हैं। तो अमल की बातें फिर दोहरा लें, ये बार बार की दोहराइयाँ ही आपको मुझे इन बातों पे माइल करेंगे, एक दफ़ा पढ़ के तो बात ही नहीं पूरी समझ आती। तो अपनी ज़िंदगी को खुशियों और दिल को इत्मीनान से भरने के लिए लोगों को आसानियाँ फ्राहम करनी है। देखिए आसानियाँ फ्राहम करना तबलीग का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हम लोगों को बात सुनाने लग जाते हैं, पहले अपनी जगह तो बनाइए। जो बंदा आपसे ताल्लुक़ नहीं महसूस करता ना, उसके आगे बड़ी से बड़ी बात भी बेकार है। ये ऐसी कि आप तबलीग करने गए और जिस बंदे के सामने बैठे बात करें उसको उर्दू आती नहीं है, आपका फ़ायदा होगा? जिस तरह ज़ुबान समझ ना आने से अगला बंदा दीन पे नहीं आएगा ना आपकी पूरी बात सुन के भी, क्योंकि उसको तो समझ नहीं है, इसी तरह आपका और उसका बीच में ताल्लुक ना बना तो भी बात नहीं समझ आती। आप अच्छे मुबल्लिग कब बनेंगे, पहले आप उन लोगों के दिल जीतिए, और उसके लिए एहसान करना पड़ता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बार बार एक ही लक़ब दिया गया सूरत यूसुफ़ में, आप कौन है, मुहसिनीन में से, तो मुहसिना बेटी होगी तो ससुराल में जगह बना लेगी, फिर दीन भी आएगा। हम जाते पढ़ाने लगे, कुर्सी खोलो, मेज़ खोलो, लैपटॉप खोलो, माइक लगाओ, मेरे आगे बैठ जाओ, पानी रखो, ये करो, आप बैठो मेरा दर्द सुनो, कोई नहीं सुनेगा। एहसान कीजिए, आसानियाँ बांटिए, लोगों को मसलों का हल बताइए, उनकी ज़िंदगी में दिलचस्पी लीजिए, उनकी छोटी छोटी बात उलझन पे अपनी पूरी तवज्जो रखिए, फिर देखिए लोग आपको कैसे मोहसिन बनाते हैं, और फिर हर अमल खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए, वरना तो बेकार है, फिर तो ना ही करें तो अच्छा, खामखा करके भी परेशान हो गए। और जितना ये करते जाएंगे उतना ही बेहतरीन तरीके से आप बेनियाज होंगे, फिर आप अपने पे भी करेंगे, बेगाने पे भी एहसान करेंगे, दोस्त पे भी करेंगे, दुश्मन पे भी करेंगे, क्योंकि जब बदले में लेना ही कुछ नहीं। देखिए एक डाकिया, मिसाल ले लें पोस्टमैन, उसने सिर्फ लेटर लेटर बॉक्स में डालने हैं, कोई बाद में उसको खोले ना खोले, पढ़े ना पढ़े, उसमें गम की खबर, खुशी की खबर, पे चेक है या ले ऑफ होने का मैसेज है, उसको इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपका मेरा काम इस दुनिया में खुशियाँ बांटना होगा इंशाल्लाह ताला आज के बाद।